Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Oswal Pumps Limited Q4 and FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. I now hand the conference to Ms. Renu Baid from IIFL Capital Services Limited. Thank you, and over to you, ma'am.
Thank you, Riya. On behalf of IIFL Capital, I'd like to welcome the management of Oswal Pumps with us today to discuss the 4Q FY26 earnings. From the management team, we have with us Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Amulya Gupta, Whole-time Director, Mr. Subodh Kumar, Chief Financial Officer, Mr. Avadhesh K. Singh, President and Chief Operating Officer, and Mr. Sanjeev Sancheti, their IR advisor, Euroz Advisors. Now, I hand over the call to Mr. Sanjeev Sancheti for his opening comments. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Renu, and good afternoon, everybody. It is my pleasure to welcome you to the Oswal Pumps Q4 FY26 and full year FY26 earnings call. As already said by Renu, we have with us the senior management team of Oswal Pumps, which includes Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Amulya Gupta, Whole-time Director, Mr. Shivam Gupta, Whole-time Director, Mr. Avadhesh K. Singh, President and COO, and Mr. Subodh Kumar, the CFO. Before we begin, I would like to draw your attention to the safe harbor statement included in the earnings and strategy presentation, which contains forward-looking statements and is also available on the BSE and NSE website. I will request all of you to go through that thoroughly. With that, I will now hand over the call to Mr. Vivek Gupta for his opening remarks. Over to you, Vivek ji.
Thank you, Sanjeev ji, and a very good afternoon, everyone. On behalf of Oswal Pumps Limited, I warmly welcome all of you to our Q4 FY26 and full year FY26 earnings call, and thank you for taking the time to join us today. I am delighted to report that FY26 for the full year operating income reached 2,064 crore, the highest in the company's history, marking a robust year-on-year growth of 44.3%. Closing the year on a strong note, Q4 FY26 operating income stood at 510 crore, reflecting a year-on-year growth of 39.8%, underpinned by disciplined and large-scale execution under PM KUSUM and various state government schemes, and further reinforcing our position as a trusted leader in solar power irrigation solutions across India. Operating EBITDA for Q4 FY26 stood at 118 crore, translating into a margin of 23.2%. For the full year, operating EBITDA grew 22.4% year-on-year to 514 crore, with a healthy margin of 24.9%. The sequential moderation in Q4 margins is attributable to competitive tender pricing and input cost pressures stemming from prevailing geopolitical uncertainties. These headwinds are being proactively addressed through structured value engineering exercises and targeted cost optimization initiatives across all our operations. FY26 also marked a historic milestone on the profitability front, with PAT reaching 376 crore, the highest of the company has ever recorded, representing a year-on-year growth of 34.1%. The momentum carried strongly into a final quarter as well, with Q4 FY26 PAT coming in at 93 crore, a year-on-year increase of 44.8%. PAT margin stood at 17.9% for the quarter and 18% for the full year, reflecting the underlying earning quality and the resilience of our business model. Turning to our order book, the company continues to maintain a robust business pipeline. Our current executable order book as of May 15 stood at 19,912 pumps. Additionally, we have a near-term pipeline exceeding 25,000 pumps, providing healthy revenue visibility for the coming quarters. On a cumulative basis, Since entering the solar pumping space, we have executed over 106,122 solar pumping systems directly under PM Kusum and allied state government schemes across 15 states, cementing our position as one of the largest suppliers of turnkey solar pumping systems in India. We are also closely tracking the anticipated rollout of PM Kusum 2, which we expect to scale meaningfully in FY27 and represent a significant incremental opportunity for the company. India's increasing focus on energy transition, agriculture solarization, water efficiency, and distributed renewable infrastructure continues to create long-term structural opportunity for the company. As part of our long-term growth strategy, the company is proactively diversifying beyond government-driven solar irrigation into rooftop solar, utility and commercial and industrial solar projects, reducing single scheme dependency and broadening our addressable market. FY26 marked a significant strategic milestone with our entry into rooftop solar segment through the first order under the Government of India's PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana. Our wholly owned subsidiary, Oswal Solar Energy Private Limited, has also incorporated a special purpose vehicle, Oswal Dun Baran Bundi Solar Projects Limited, in partnership with Dun Infrastructure in Infra Power Projects Private Limited, holding a 60% stake, to execute a rooftop solar photovoltaic power project on state government building in Rajasthan under the hybrid annuity mode. Across the rooftop solar, utility and CNI solar segments, we have built a healthy combined pipeline of approximately 300 megawatt as of date. Together, these segments provide strong top-line visibility and reflect growing market traction as we scale these verticals methodically. On the IPO objectives front, I would like to share a brief update on our capital expenditure plans. Pump and motor capacity expansion and automation in pumps and motor. We expect the entire CapEx program scheduled for completion by Q3 FY27. And in solar module plant, with respect to our solar module capacity, we expect the first phase of expansion comprising 1 gigawatt of solar module to be completed by Q1 FY27. The remaining 0.5 gigawatt expansion is planned to be completed by Q3 FY27 in line with our phased execution strategy. With a strong foundation in solar power irrigation, a growing presence across multiple renewable energy segments, and a proven ability to execute at scale, the company enters its next phase of growth from a position of considerable strength. Ongoing capacity expansion, a diversifying revenue mix, and India's clean energy tailwind together create a compelling platform for sustained value creation for our farmers, our communities, and our shareholders. With that, I will now hand over the call to our CFO, Mr. Subodh Kumar, who will take you through the financial performance in great detail.
Thank you, Vivek, and good afternoon, everyone. I will now take you through the key financial highlights for Q4 financial year 2026 and the full year FY26. I trust you have had the opportunity to review our earning presentation and financial disclosure. While Mr. Vivek Gupta has already covered the operational and the business performance, I will focus on the company financial positions, cash flow, working capital profile, and IPO fund utilization. From a balance sheet perspective, the company continued to maintain strong and well-capitalized financial position. As of March 31, 2026, net debt stood at approximately 135 crore, translating into a net debt to equity ratio of 0.08x and net debt to operating EBITDA of 0.226x. On the cash flow front, the company witnessed a significant improvement in operating cash flow during FY 2026. Operating cash flow improved from negative 142 crore in financial year 25 to negative rupees 77 crore in financial year 2026, supported by better working capital discipline and improved collection efficiency. Importantly, collection exceeding 116 crore received on April 2, 2026 effectively converted the full year operating cash flow positioning into a positive rupees 39 crore, highlighting the strong underlying cash generation capability of the company. Further, reinforcing this improving trend. Operating cash flow for quarter 4 financial year 2026 stood positive at 171 crore. Our cash conversion cycle as of March 31st, 2026 stood at 172 days as compared to 177 days as of December 31st, 2025, reflecting gradual improvement in working capital efficiency. Receivable days remained elevated at 155 days relative to historical levels, primarily due to delay in collection from state nodal agencies under the PM KUSUM and Mughal Tel schemes. We would like to reiterate that these receivables are entirely from government and government-backed counterparties and therefore remain fully secure in nature. Over the last few months, we have started witnessing early sign of normalization in collection, supported by continuous engagement with the respective authorities. As the collection cycle improves further, we expect a meaningful reduction in the cash conversion cycle along with corresponding benefit in finance costs and continue to be deployed in the line with stated objectives, including capacity expansions, automations, backward integrations, and debt reductions, all of which are expected to strengthen the company's long-term profitability and return metrics. For financial year 2027, we are targeting overall growth of 20 to 25% over the previous year. This year is expected to have a distinctly back-ended growth profile, with the first two quarters likely to witness a moderate but temporary revenue decline due to the timing of project awards and execution schedules, with execution momentum building progressively in the second half of the year. This phasing is closely linked to the anticipated rollout of PM KUSUM 2, which we believe is imminent. The timing of announcement will have a direct bearing on near-term order inflow and execution schedules. At the same time, as discussed by our MD sir, we have been actively building a pipeline across multiple other project segments to diversify growth drivers beyond KUSUM-linked opportunities. We expect these initiatives to start contributing meaningfully from the third quarter onward and support a broader execution base going forward. Looking beyond financial year 2027, we are targeting a sustained growth momentum of 30 to 40% in the medium terms as execution across these multiple front gather phase. From a profitability standpoint, we expect operating EBITDA margin for FY 2027 to be in range of 22 to 23%. The slightly lower margin are due to elevated input costs arising from ongoing geopolitical tensions along with competitive pricing dynamics in the tendering environment, which we believe in transitionary. Beyond financial year 2027, we do expect margin to improve gradually as operating leverage strengthens and market conditions normalize. However, we will provide firmer guidance on the margin trajectory as we progress. We would encourage investors to evaluate our margin on an annual basis as quarterly margin may vary with the phasing of execution. PAT margin are expected to be in range of 15 to 16% for financial year 2027, broadly in line with the operating margin trajectory. With that, we would now be happy to take your questions. Thank you very much.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. First question is from the line of Ms. Renu Bait from IIFL Capital Services Limited. Please go ahead.
Thank you. So my first question would be, you did allude to fiscal 27 to be a back-ended year for growth and first half probably likely to see decline. So if possible, can you share what is the expected growth that you're looking or decline that you're anticipating in first half? And in your view, what percentage of the growth guidance is dependent on incremental new orders being awarded under PM KUSUM 2? So in case if there are further delays from KUSUM 2, is your 20-25% revenue growth guidance for the year at risk? That's the first question.
Thank you, Renuji. Basically, definitely, hum log abhi PM KUSUM 2 ki wait kar rahe hain. As we got information from ministry, and we are expecting PM Kusum to launch at any time, and expected first meeting from the ministry immediately. So definitely ki jab jaise hi hame PM Kusum 2 ki allot announcement hoti hai, uske baad clear bahut growth trajectory mein bahut clarity ke sath hamare paas clarity aane wali, number one. Lekin in the meantime, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट की है, जो ऑलरेडी हमारे पास मागलतला के ऑर्डर्स हैं या जो अभी मागलतला T5 के टेंडर बिड हुए हैं उसके भी ऑर्डर हमें अलॉट होने वाले हैं, सो वो ऑर्डर हम स्टिल वेट कर रहे हैं. थर्ड, जो हमने बिजनेस रूफटॉप में और अदर टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया है जिसकी हमें विजिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, सो उस सिस्टम को देख के हम Q1 और Q2 में आज के दिन में हमारे पास ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है Q1 Q2 को लेके. लेकिन चूंकि ये नई डाइवर्सिफिकेशन लाइन है तो हमें एग्जीक्यूशन में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसको लेके वी आर लिटल कंजर्वेटिव कि उसके क्या रेवेन्यू आने वाले हैं क्या नहीं आने वाले हैं, तो थोड़ा सा वहां पर कंजर्वेटिव है. अदरवाइज एज ए ऑर्डर बुक वी आर क्वाइट वेरी सेफ एंड हमारे पास आज के दिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है. थैंक यू.
First half that you are indicating?
First half, देखिए, as a order book, मुझे लगता है कि हम लोग last year वाले revenue में आराम से हम cover up कर सकते हैं. Even we can do more than last year revenue. But slightly यहाँ पर हम conservative रहने हैं क्योंकि जो नए diversified business में हमने हमें business मिल रहा है उसका execution part कितना कैसे क्या experience होने वाले हैं. तो वो जैसे हमारे एक्सपीरियंस होंगे उसके बिहाफ पे हम वो कॉल ज्यादा एग्रेसिव कॉल लेने वाले
हैं. सो सेकंड क्वेश्चन, जैसे आपने बताया यू हैव बिल्ट अप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फॉर रूफटॉप सोलर, देयर इज एन एसपीवी आल्सो व्हिच यू हैव क्रिएटेड फॉर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान. सो ये रूफटॉप प्रोजेक्ट्स में व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी दैट वी आर लुकिंग एट गिवन दैट वी आर न्यू इन द सेगमेंट, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट एंड दीज आर अर्ली स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स. So what is approximately the margin differential versus the core business here?
Okay, fine. देखिए, as a Oswal, चूंकि बहुत backward integrated facility है Oswal के पास, we are making all structure as well as solar modules, BOS, जो और even we are going to start our inverter production. तो वो सब facility already हमारे पास है. तो हमारा पहला plan ये कि हम ये एग्जीक्यूशन करने के बाद ये देखे कि क्या हमें ओवरऑल चैलेंजेस आने वाले हैं. सो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली वहां पर हेल्दी रहने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट फेज में हम प्रॉफिट को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूशन और ये देख रहे हैं कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं. सो हो सकता है कि फर्स्ट फेज में कुछ एक्सपेंसेस एक्सपीरियंस के नाम पे हम लोग ज्यादा कर पाए करें, लेकिन ओवरऑल इन अ फ्यूचर वे क्योंकि हमारे पास वो सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और मार्केट में हमारा नेटवर्क ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट एज कम्पेयर टू जो अभी हम ले रहे हैं, जो हमने गाइडलाइन दी है, वो हम क्वाइट वी आर वेरी श्योर कि हम वो अचीव कर लेंगे. थैंक यू.
थैंक यू.
थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ नितिन कौशिक फ्रॉम एफएन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड. प्लीज गो अहेड.
हेलो, गुड आफ्टरनून सर.
Good afternoon.
Thank you for the opportunity. So my question was, could you provide some guidance on expected capex for FY27 and in which areas this investment would primarily be directed towards?
Okay. Yeah. Thank you, Nitin ji. जो हमारा capex है, जो हमने IPO के proceeds से capex लिया है, वही capex जैसे हमने guideline में दिया कि हम दो जगह कैपेक्स कर रहे हैं. एक जो हमारे पेरेंट कंपनी ओसवाल पंप्स लिमिटेड है, सो वो हम Q3 तक टोटल हमने आईपीओ प्रोसीड्स में करीब 90 करोड़ के आसपास का फंड रेज किया था, सो वो पूरा फंड हम इन्फ्यूज कर देंगे एंड ऑफ Q3 तक, जिसमें ऑटोमेशन एंड कैपेसिटी एनहेंसमेंट के लिए फंड लिया गया था. एंड द सेकेंड हमने फंड लिया था ओसवाल सोलर में, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी एनहेंसमेंट जो एग्जिस्टिंग हमारी 0.600 मेगावाट की थी, 600 मेगावाट की, जिसको हम एनहेंस करके 2.1 गीगावाट की कर रहे हैं, एज वेल एज उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन लाइक एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्लांट, ईवीए एंड सो ऑन. सो वो सब फैसिलिटी भी हम लोग Q3 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 तक हम लोग सारे फुलफिल कर लेंगे. थोड़ा बहुत उसमें अगर एल्युमिनियम एक्सट्रूजन या कुछ रह जाएगा तो एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक वी विल इन्फ्यूज अराउंड 50 करोड़ के आसपास का टोटल कैपेक्स हम लोग इस साल FY27 में इन्फ्यूज कर रहे हैं.
ओके सर. सर विद पीवी मॉड्यूल्स नाउ कंट्रीब्यूटिंग साइजेबल शेयर ऑफ रेवेन्यू, सो हाउ शुड वी थिंक अबाउट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी? Like the margins have slightly reduced. So is it because that PV modules are gaining significant share of revenue, or is it due to the PM Kusum scheme segment or solar pump segment?
Okay, Nitin ji, देखिए primarily जो हमने solar modules के expansion का plan किया था उसका basic agenda यही था कि हम लोग पीएम कुसुम को ज्यादा फोकस करेंगे और पीएम कुसुम की बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये हमें हेल्प करेगा. लेकिन जैसे हमने बताया कि अभी पीएम कुसुम 2 डिले हो रहा है या डिले हुआ है, इस बीच में कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली एक कॉल लिखी कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे अदर बिजनेस में भी. तो डेफिनेटली हमारा कोर थॉट यही है कि हम लोग रूफ टॉप या वो भी एक तरह के टेंडर वहां उठाएं ताकि वो मार्जिन्स भी हमारे पास हो. तो डेफिनेटली एक ये जो सोलर मॉड्यूल है वहां पर हमें स्केल करने में हेल्प करेगा और प्रॉफिट्स को भी इंटैक्ट करने में काफी कुछ हेल्प आउट हमें करने वाला है. सो इनफैक्ट अब हमारा जो पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है ये हमें मल्टीपल जगह हेल्प आउट करने वाला है. लाइक पीएम कुसुम 2 तो आ ही रहा है, वहां भी हमें करेगा और अदर रूफ टॉप या अदर सिस्टम में भी हेल्प करेगा. एंड रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज आज आप जियो पोलिटिकल इशू देख रहे हैं और रॉ मेटेरियल्स के प्राइस उस इशू की वजह से बहुत हाई हो रहे हैं. सो मल्टीपल रीजन्स की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट आ रहा है. सो लेकिन फ्यूचर में जैसे ही मार्केट स्टेबल होती है ये सब जियो पोलिटिकल इशू रिजोल्व होते हैं, सो वी आर क्वाइट वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग अपने प्रॉफिटेबिलिटी को दोबारा से रिगेन करेंगे और बहुत ही हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में दोबारा हम लोग आएंगे. थैंक यू.
ओके सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीएम कुसुम स्कीम 2.0 तो अभी मतलब अनाउंस हो जाती है, तो इन फ्यूचर वुड दिस पीवी मॉड्यूल शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डिक्लाइन?
नो, देखिए अगर पीएम कुसुम 2 तो डेफिनेटली अनाउंस होने ही वाली है जैसे मैंने कहा. सो लेकिन अब एज अ स्ट्रेटेजिक कंपनी ने कॉल लिए कि कंपनी अब एक स्कीम पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाली है. सो कंपनी मल्टीपल स्कीम्स पे फोकस कर रही है और उसी एजेंडा को उसी फोकस को लेके कंपनी आगे बढ़ेगी ताकि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में कंपनी का कंट्रीब्यूशन हो कि ताकि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम किसी भी वजह से सिंगल स्कीम अगर डिले होती है तो हमारे ओवरऑल रेवेन्यू पे या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई मेजर इम्पैक्ट ना आए. या थैंक यू नितिन जी.
थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ पुनीत जे फ्रॉम जवेरी एंड को. प्लीज गो अहेड.
विवेक जी, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सर एक कैश फ्लो पे आप अगर थोड़ा थोड़ी और लाइट डाल सकते हैं तो बेटर होगा. कि आपने पिछले क्वार्टर के बाद बोला था कि ये रिसीवेबल डेज 157 डेज थोड़े कम होंगे, बट वो और आपने ये डाला है कि आपको 2 अप्रैल को थोड़ा कैश फ्लो आया था एंड रिसीवेबल्स आए थे, बट ये प्राइमरीली ये डिले का रीजन क्या है? एंड ये कोई स्पेसिफिक स्टेट्स का है या क्योंकि आपके ऑर्डर बुक में भी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश इनकी ज्यादा ऑर्डर है कभी करंटली आपके ऑर्डर बुक में, बट ये आपके जो करंट रिसीवेबल डेज है वो कोई स्पेसिफिक स्टेट्स के हैं या ब्रॉडली आपको ये करंटली इशू अक्रॉस स्टेट दिख रहा है कि एजेंसीज के थोड़े डिले है टू रिलीज द रिसीवेबल्स?
थैंक यू पुनीत जी. देखिए इसमें दो बातें हैं, कैश फ्लो एंड रिसीवेबल. तो सबसे पहले मैं आपको कैश फ्लो के बारे में बता चाहूंगा. सो अगर हम FY25 में देखते हैं तो हमारा करीबन 152 करोड़ का कैश फ्लो नेगेटिव था, जो कि दिसंबर 2025 में आते आते करीब 247 करोड़ का कैश फ्लो नेगेटिव था. क्वार्टर 4 के कंप्लीशन तक हम एज पर बुक्स में जा रहे हैं तो हमारा 70 के करीब हमारा कैश फ्लो नेगेटिव है. बट इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई है पुनीत जी, कि 30th 116 करोड़ की पेमेंट की, जो कि हमारे बुक्स में 2 अप्रैल को रिफ्लेक्ट हुई। अगर ये 31 को हमारे बुक्स में रिफ्लेक्ट हो जाती तो हमारा कैश फ्लो जो 70 करोड़ माइनस दिखा रहा है वो 40 करोड़ प्लस होता। नंबर वन पॉइंट, अलोन हमने लास्ट फोर्थ क्वार्टर में अगर ये 116 करोड़ का 31 को आता तो करीबन 286 करोड़ के आसपास का हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव होता। सो ये ड्यू टू रिसीवेबल हमें टाइमली आए हैं तो इसका एक मेजर इम्पैक्ट रहा है। तो ये कैश फ्लो को साइड से आज ओसवाल इज वेरी कंफर्टेबल। नंबर वन पॉइंट। सेकंड, डेफिनेटली चूंकि हमारा FY26 में मेजर बिजनेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हुआ, सो हरियाणा के साथ हुआ, इन सब स्टेट को, पर मेजरली हरियाणा के महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जैसे मैंने पहले बताया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस लास्ट ईयर पॉलिटिकल इलेक्शन थे, प्लस महाराष्ट्र में जो MSDCL है इन्होंने एक इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी एक प्रोजेक्ट किया था, जिसकी वजह से 2-3 महीने पूरा डिपार्टमेंट पूरी सब लोग वहां पर एंगेज रहे, वो भी एक रीजन था डिले होने का पेमेंट्स का। सो ये मल्टीपल रीजन की वजह से, प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर थर्ड पार्टी से फंड्स का अरेंज किया था AIIB बैंक, कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट जैसे ही वो सब हुआ तो क्वार्टर फोर में MSDCL ने बड़ी मेजर पेमेंट्स रिलीज की, जिसकी वजह से ओवरऑल रिसीवेबल टाइम इम्प्रूव हुआ है, जो कि लास्ट ईयर में अगर 157 डेज था जो 152 पे आया, सो इट इज इम्प्रूव फ्रॉम लास्ट ईयर। और लेकिन एज ए रूटीन मैटर में भी अगर हम देखें टेंडर्स का देखते हैं, सो इट इज इन बिटवीन 152-160 डेज, बेसिकली 120 डेज में हम लोग 90% पेमेंट की एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो 10% पेमेंट है वो अगले 120 डेज में। तो ओवरऑल जब हम एक्युमुलेटिवली इनको काउंट करते हैं तो 152-160 डेज एक रूटीन, ये नेचर ऑफ बिजनेस है, और ये बिजनेस में अगर हमें 152-160 डेज में पेमेंट आ रही है, सो एज पर आवर ओल्ड एक्सपेक्टेशन हम ये मानते हैं कि हम एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। डेफिनेटली पीएम कुसुम 2 में गवर्नमेंट कुछ और अच्छा सोच रही है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की वी आर एक्सपेक्टिंग, कि जिस तरह की सजेशन इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को दी है एंड गवर्नमेंट इज वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, तो वहां पर हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसीवेबल साइकिल करीब 30-40 डेज का थोड़ा कम होगा, बट ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन पीएम कुसुम 2 जैसे अनाउंस होगा वो क्लैरिटी आएगी। थैंक यू प्रीत जी।
और सर सिर्फ एक और सवाल, आपने कहा अभी कि H1 में आप थोड़ी बिकॉज पीएम कुसुम का डिले है तो थोड़ा डिक्लाइन दे सकते हैं, बट आपका जो करंट ऑर्डर बुक है 16 पंप्स का रफली 19,900 के आसपास, एंड लास्ट ईयर आपने रफली 87,000 16 पंप सप्लाई किए, तो रफली 20% का आपका लास्ट ईयर का करंट ऑर्डर बुक है, बट वो जनरली सर Q1 में काफी कुछ लाइक उससे खपती हो जानी चाहिए, राइट? तो आपके एक्सपेक्टेशन है कि जो रिमेनिंग क्वार्टर है उसमें आपको इतने ऑर्डर बुक मिल जाएंगे कि आप क्वार्टर 2 के एंड तक एटलीस्ट थोड़ी लास्ट ईयर जितना एटलीस्ट आप रेवेन्यू दिखा पाएंगे, क्या वो अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है?
देखिए पुनजी, मैं बहुत ही हम लोग बहुत एग्रेसिव काम कर रहे हैं कि कंपनी किसी भी तरह से FY26 से रेवेन्यू में डिक्लाइन ना करे H1 में, बट एज ए कंजर्वेटिव साइड की प्रैक्टिकली क्या होता है कि आज की जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं कि कुछ एग्जीक्यूशन में लगा लीजिए जियो पोलिटिकल पोजिशन भी है या कुछ रॉ मटेरियल्स को लेके भी है इंक्रीज में, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव एक्सेस कर रहे हैं, तो बी ए सेफर साइड हम ये मान के चलते हैं कि H1 थोड़ा सा इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इफेक्ट होगा ही होगा, बट हो भी सकता है, तो लेकिन अगर होगा भी तो भी मुझे इसलिए वरीज नहीं है कि ओवरऑल पूरे साल में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कवर करने वाले हैं Q3 एंड Q4 में ये सब। अगर फॉर इंस्टेंस अगर बाई चांस कुछ इफेक्ट आता है तो Q3 Q4 में बहुत इफेक्टिवली इसको कवर कर लेंगे, वहां पर हम बहुत श्योर हैं, तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव जरूर हम थोड़ा यहाँ पर सोच रहे हैं, बट हम लोग काम बहुत अच्छा काम बहुत कर रहे हैं तेजी से, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, अग्रेसिव लगी हुई है कि किस तरह से रिवेन्यू में वो डिक्लाइन ना हो।
आई जस्ट वॉन्ट टू एड संजीव हियर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द फर्म ऑर्डर जो 19912 का जो हमारे पास ऑलरेडी हाथ में है, हमारे पास सोलर पंप की पाइपलाइन भी है 25,000 पंप की, वो भी प्रोग्रेसिवली अगले 3 महीने 4 महीने में वो भी ऑर्डर आएंगे. तो इट्स नॉट दैट आई एम डिपेंडिंग ऑन 2 quarters फॉर ओनली 19,912 पंप. 19912 इज लार्जली फॉर द फर्स्ट क्वार्टर.
ओके थैंक यू विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
थैंक यू पुरी जी.
थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ करण कामदार फ्रॉम चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज. प्लीज गो अहेड.
हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. सर एक रियलाइजेशन पे एक क्वेश्चन था मेरा कि हम जैसे सुन रहे हैं कि मागिल तैला में रियलाइजेशन कम आ रहे हैं, तो कुसुम 2.0 में क्या एक्सपेक्टेशन है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है रियलाइजेशन में? दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन.
ओके थैंक यू करण जी. देखिए ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में हमने मेजर बिजनेस किया और मागल तेला में पहले ड्यू टू पॉलिटिकल इलेक्शन या ड्यू टू अदर रीजन की वजह से लास्ट ईयर पेमेंट थोड़ी सी डिले हुई है, बट नाउ एमएसडीसीएल इज ऑन ट्रैक और क्वार्टर फोर उसका रिजल्ट भी है. क्वार्टर फोर में एमएसडीसीएल ने बहुत हेल्दी पेमेंट्स की हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है. मतलब हम ओवरऑल बहुत रिसीवेबल भी काफी बेटर हुए. सो आई थिंक थोड़ा बहुत क्वार्टर टू क्वार्टर में वेरिएशन हो सकता है, बट एमएसडीसीएल की पेमेंट्स आगे हम ज्यादा डिले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, नंबर वन पॉइंट. एंड डेफिनेटली पीएम कुसुम 2 तो काफी मॉडिफिकेशंस के साथ आएगा. उसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट वेंडर्स फ्रेंडली बना रही है. वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में सोलराइजेशन हो, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स के लिए पंप हो. तो वो सारी स्कीम्स या जिस तरह की भी फैसिलिटी है वो ऐसे बना रही है कि विन विन पोजिशन हो. सो पीएम कुसुम 2 में डेफिनेटली एंटायर इंडस्ट्री बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है in terms of receivables, in terms of policy. Yeah, thank you.
I would also like to add here, slightly unrelated, but just if you look at the situation to the geopolitical situation, I think the government is also clear that their requirement for solar energy, of energy, you cannot depend on fossil fuel only. And obviously the alternate source is becoming even more important. It's just that this whole phase is slightly transitionary. Solar is going to come in a big way. Kusum is going to come in a big way. It's just a matter of time.
Sure, sir. I agree on the solar part. I think Kusum 2 will be very beneficial. Sir, ये जानना था कि जो भाव अभी कम है, शायद पहले से, because cost बढ़ गए हैं, तो cost के line में भाव भी बढ़ेंगे क्या? Is the second question.
देखिए, definitely जो भाव बढ़े हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, सो हम पीएम कुसुम 2 में जो टेंडर्स आएंगे, डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पर टेंडर्स के प्राइसेस इंक्रीज होने चाहिए. ऐसा पूरी इंडस्ट्री की होप भी है, बट डेफिनेटली चूंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मल्टीपल लोग हैं, कुछ लोग नए लोग एंटर करना चाहते हैं, तो वो लोग डेस्परेटली कुछ ऐसी कॉल कहीं बार ले लेते हैं कि जिससे प्राइस डाउन होते हैं. तो ये बहुत टफ हो जाता है कि हमारे हाथ में नहीं होता. बट ब्रॉडर वे में अगर हम थॉट प्रोसेस देखते हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, चैलेंजेस बढ़े हैं, सब एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं. तो मुझे ऐसा पूरी इंडस्ट्री का थॉट प्रोसेस है कि फेयर वैल्यू के हिसाब से ही टेंडर्स आने वाले हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग.
गॉट इट सर. थैंक यू. इफ आई कैन आस्क वन मोर क्वेश्चन सर, ये जो सर सो जो हमारे जो नंबर्स आए हैं H2 में, एंड आप बोल रहे हो कि H1 विल बी सिमिलर टू FY 2026, सो डू यू मीन कि H1 टू H1 और H1 टू H2 ऑफ FY 2026? कहाँ से ग्रोथ कैलकुलेट कर पाएंगे हम?
देखिए H1 जैसे मैंने कहा, H1 कैन बी सिमिलर टू FY 2026 और कैन बी डिक्लाइन फ्रॉम FY 2026, नंबर वन पॉइंट. बट ओवरऑल अगर हम एनुअल की बात करेंगे FY 2026-27 की, तो डेफिनेटली हम लोग वहां से 20-25% की मिनिमम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन एंटायर ईयर में, जिसमें हम जो हमारे अदर्स बिजनेस मॉडल्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जहाँ से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी आ रही है, वो सब को कैलकुलेट करके तो वहां पर हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अलाइन है कि उसकी ग्रोथ नहीं, बट एज ए क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, इस तरह के पावर प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, पीएम कुसुम पे भी है, तो डेफिनेटली मैं ईयर ऑन ईयर की इस साल मैं आपको ज्यादा विजिबिलिटी दे पाऊंगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा मुझे खुद को लग रहा है कि मुझे इस साल कंजर्वेटिवली H1 में चलना चाहिए आपको विजिबिलिटी देने के लिए, दैट्स व्हाई।
गॉट इट सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन इफ आई कैन, जो हमने आईपीओ के लिए फंड रेज किया था कीपेक्स के लिए, ऑल द कीपेक्स इज ऑन ट्रैक, एनी डिलेज एक्सपेक्टेड है?
एब्सोल्युटली सारा कैपेक्स बिल्कुल 100% ट्रैक पे है, थोड़ा बहुत 2-4 महीने का डिले हो जाता है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा किसी जो प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने में आता है, अदरवाइज हर चीज बहुत ट्रैक पे चलती है।
गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
थैंक यू।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रखर तिब्रेवाल फ्रॉम चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, प्लीज गो अहेड।
हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, कंग्रेचुलेशन ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। सर मेरा क्वेश्चन ज्यादा फोकस है आपके सोलर पैनल एंड मॉड्यूल, सूर्यघर बेसिकली टारगेटेड बिजनेस में, तो उसमें हम अभी कितनी होगी हमारी बिडिंग पाइपलाइन, और उसी पे फॉलो अप है कि क्या इसकी हमारे मार्जिन्स हमारे कुसुम पंप्स के बराबर है, उससे ज्यादा है, उससे कम है?
ओके, देखिए प्रखर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में अगर मैं ऑर्डर ये पाइपलाइन की बात करता हूँ, तो हम करीब 300 मेगावाट की पाइपलाइन अपनी देख पा रहे हैं, नंबर वन पॉइंट, अलोंग विद अदर एक्टिविटीज जो हमारी टीम काम कर रही है, जो भी इन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, तो डेफिनेटली आज हमारा फर्स्ट मोटो, चूंकि ये स्ट्रेटेजी गोल है, तो हम फर्स्ट मोटो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इस साल का एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं, प्लस जो पीएम सूर्य घर है या और भी है हमारे पास, अच्छी बात यह है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी तो गेन कर ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी लेवल तक अवेलेबल है, तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा वरी नहीं है, लेकिन एक पूरा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल करने के बाद हम ओरिजिनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि किस किस प्रोजेक्ट को आगे फ्यूचरिस्टिक हमें बनाना चाहिए और किस किस प्रोजेक्ट को नहीं बनाना चाहिए, आफ्टर गेटिंग ऑल दीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई। या प्लीज।
ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।
थैंक यू प्रखर जी।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ दर्शिल जवेरी फ्रॉम क्राउन कैपिटल, प्लीज गो अहेड।
हेलो, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। सर मेरे को सिर्फ ये जानना था कि अपन क्वेश्चन अपना ऑर्डर बुक अराउंड 19,000 है, तो वो अगर शायद से Q1 में एग्जॉस्ट हो जाए, अगर अपना कुसुम आता नहीं है Q1 या Q2 तक, तो Q2 का रेवेन्यूज कैसे इम्पैक्ट होगा? मतलब अगर समझो कुसुम स्कीम अनाउंस होता है, टेंडर सब आएंगे, उसको अपन एनालाइज करेंगे, बिड करेंगे, तो वो कितना टाइमलाइन होता है? अगर आप जस्ट एज अ डेट अपन समझते कि
नहीं नहीं सॉरी आई थिंक बिफोर विवेक जी आंसर, आई वांट टू जस्ट करेक्ट दैट द ऑर्डर इन हैंड इज अबाउट 19,000, बट देर इज अ पाइपलाइन ऑफ 25,000 विच इज अगेन लार्जली रिलेटेड टू कुसुम एंड मंगल तेला, इट इज नॉट जस्ट वो 19,000 है, तो आई थिंक पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वार्टर गेट कवर्ड देयर, रेस्ट आई विल लीव विवेक जी टू आंसर।
ओके ओके सर, सो फेयर एनफ, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन सर। सो अगर जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो पीएम कुसुम का टाइमलाइन रैंप अप होता है वो कैसे होता है, मतलब समझो कि अभी 1 जून को पीएम कुसुम गेट्स अनाउंस, सो जस्ट एज अ हाइपोथेटिकल कि कब अपना टाइमलाइन कैसे होगा, टेंडर्स आएगी, अपन एनालाइज करेंगे, बिड खुलेगा, तो व्हाट इज द लीड वे फॉर दैट सर? हेलो
विवेक जी। हेलो,
हाँ हाँ सर,
यू नो आई थिंक द आई फियर दैट द अदर साइड द कंपनी लाइन में ड्रॉप्ड, कैन आई रिक्वेस्ट द मॉडरेटर टू सी इफ यू कैन जस्ट जॉइन देम बैक एंड मे बी यू विल हैव रिपीट द क्वेश्चन, पार्ट ऑफ इट आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड,
Yeah, fair enough. That part is helpful, sir. So just the second part would be, yes.
And we've also covered it in the in our presentation and opening remark. So you will be able to get it in the script as well and the presentation. I think maybe for some reason they would have got dropped.
Yeah. Hello.
Hello.
Please
repeat the question. हाँ नहीं सर, सो पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन ये जानना था समझे कि अगर पीएम कुसुम योजना अनाउंस होती है अभी 1 जून से तो कितना टाइम लगेगा फॉर अस टू रिसीव द ऑर्डर, मतलब देयर विल बी अ प्रोसेस राइट, टेंडर अपन आएंगे एनालाइज करेंगे अप्लाई करेंगे वो रिलीज होगा L1 हमको या L2 मिलेगा जैसे भी रहेगा, तो क्या टाइम लाइन रहता है, मतलब इज इट 2 months 3 months, हाउ मच टाइम it for number one we getting the order and number two our execution and revenue starting up.
Okay, देखिए हम ये expect कर रहे हैं कि जो ये PM Kusum 2 है in the month of June में announce होगा मान लीजिए, so practically
yes,
के जो numbers execution start होंगे वो Q3 से start होंगे, मतलब Q3 में भी we are expecting from November कि November से वो practically execute होना शुरू होंगे, उससे पहले टेंडर्स की कॉल, उसके टेंडर्स का पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट विद इन 2 मंथ में फिनिश हो जाता है, मान लीजिए जून में इन्होंने टेंडर कॉल किया सो मैक्सिमम अगस्त तक ये कॉल हो जाएगा, उसके बाद वो स्टेट एजेंसीज को अलॉट टाइम रहता है, तो सेफर साइड हम मानते हैं कि सितंबर एंड तक हमारे पास LOIs आ जाते हैं, सो एक उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम हमें इंटरनल तैयारी में लगता है, सो इसलिए सेफ साइड में एग्जीक्यूशन साइड हम बात करें कि नवंबर ऑनवर्ड्स, तो Q3 Q4 में एक अच्छे नंबर्स में वहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसकी तैयारी भी हम लोग पहले से काफी हम कर भी रहे हैं और करके भी रखेंगे हम लोग।
हाँ नहीं नहीं फेयर एनफ सर, सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन उस रिगार्डिंग ताकि समझे कि ये अपॉर्चुनिटी अगर थोड़ा बहुत भी डिले आता है तो हमारा Q3 भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर जून के बदले, बिकॉज यू नो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, गवर्नमेंट को अभी स्पेंड नहीं करना या फिर उनका थोड़ा बहुत अगर फोकस किधर और है तो थोड़ा बहुत भी डिले आएगा तो हमारा Q3 भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है सर?
देखिए अगर हम हाइपोथेसिस पे बात करें तो आपकी बात सही है, पीएम हमारे पीएम ने भी जो स्पीच दी थी वहाँ भी उनका फोकस बहुत क्लियर है कि डीजल पेट्रोल की कंजप्शन कम की जाए और ये और मिनिस्ट्री में भी पीएमओ से ये उनकी तरफ से आया क्लियर कि आप ज्यादा से ज्यादा फार्मर जो डीजल पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको डीमोटिवेट करो, अर्जेंट से सोलराइज करो, सो अब किसी तरह का डिले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब हम लोग, और गवर्नमेंट अब ज्यादा एग्रेसिव है इस जियो पोलिटिकल सिचुएशन को देख के अब रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, और वहां पर गवर्नमेंट को लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्योंकि हमारा कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, सबसे ज्यादा मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर की है और हमारी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, सो ये एक गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ा वो चीज है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक ऐसी स्कीम है, तो मुझे लगता है कि अब डिले वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, इवन इट विल बी मोर कमिंग इन ए वेरी वेरी मोर एग्रेसिव है ये बहुत, और इंडिकेशन भी हमें फ्रॉम लास्ट 6 से 7 दिनों में जितनी इंडिकेशन आई है बहुत एग्रेसिव इंडिकेशन आई है, तो इसलिए वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे जाने वाला है।
अच्छा ठीक है, फेयर इनफ सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ नितिन बाबूलाल गांधी फ्रॉम इनोक्वेस्ट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज गो अहेड।
या थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। सर आप बताएंगे कि ये जो डेट हमने रीपे कर दी 311 करोड़, उसकी कॉस्ट क्या थी आपने? आईपीओ प्रोसीड में से 311 करोड़ की डेट हमने पेमेंट कर दी, सही?
अच्छा डेट पेमेंट,
हाँ, तो उसकी कॉस्ट क्या थी हमें?
हमारा 20 जून को हमारा लिस्टिंग हुई थी आईपीओ की, कॉस्ट ऑफ डेट बात करें या रीपेमेंट ऑफ डेट?
जी कॉस्ट ऑफ डेट,
कॉस्ट ऑफ डेट ओके, तो अराउंड 9% की कॉस्ट थी उस समय, 9.5 से 9% की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट थी।
ठीक है, और दूसरा आईपीओ प्रोसीड के 200 करोड़ जो थे जनरल कॉर्पोरेट, उसमें से वर्किंग कैपिटल में कितना लगा है?
उसमें एंटायर पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में लगाया।
ठीक है, और अभी जो अपना एक्सपेंशन हो रहा है और सब्सिडियरी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे अपना पोटेंशियल पीक टर्नओवर कितना हो सकता है?
देखिए
मे बी 29 में।
ओके, देखिए जो ओरिजिनली हम लोगों ने प्लान किया था, ये क्योंकि हम पीएम कुसुम 2 में प्रोमिनेंट सप्लायर है, सो हम इसका बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी लेवल पे हमने 2.1 गीगावाट की अपनी कैपेसिटी एनहेंस की थी, सो डेफिनेटली हम करीब 30-40% का सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कमिंग ईयर्स। सो कंटिन्यूसली उसको हम बिल्कुल इंटैक्ट है। यही साल जो प्रेजेंट ईयर है FY27, ये साल थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि डिले हो रहा है, अदरवाइज नेक्स्ट अगले सालों में हमें किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। उस समय तक इनफैक्ट जो हमारे अभी तक अगर हम पिछले 6 महीने पहले या 5 महीने पहले के थॉट प्रोसेस देखें, तो उस समय हमारा बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड नहीं था डाइवर्सिफाई बिजनेस में जो कि आज के दिन है। तो मुझे लगता है कि जो हम 30-40% के बीच में हम जो देख रहे हैं ग्रोथ अपनी नेक्स्ट ईयर, इतनी हम आराम से अचीव करेंगे, मे बी मोर देन दैट। तो वहां पर हम इस तरह का कोई गैप मुझे नहीं दिख पा रहा है। थैंक यू नितिन।
ऐसे आप बता सकते हैं कि ये
इनका क्वेश्चन डिफरेंट है वेद जी, वो बोल रहे हैं कि अपना एक्सपेंशन जब हो जाएगा तो हम मैक्सिमम कितना रेवेन्यू कर पाएंगे उस कैपेसिटी से। इनका क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारा डिमांड के हिसाब से कितना रेवेन्यू करेंगे, बोलेंगे इस कैपेसिटी में व्हाट इज द पीक।
आप एक बार आंसर करो इसको आप।
हाँ हाँ, तो वही मैं बोलो, तो वी विल, सो मी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव प्रेजेंटली बोथ ऑन द पंप एंड द सोलर मॉड्यूल सेगमेंट, आई थिंक वी उदित यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम स्लाइटली ऑफ, बट आई थिंक 6,500-6,000 इज what we can absolutely do.
Current capacity of 2,600-800 existing with expanded, आपका 6,500 तक business हो सकता
है। बहुत सिंपल है, हम लोग अपनी पंप की कैपेसिटी को करीब करीब 2.5 times बढ़ा रहे हैं और मॉड्यूल तो ऑब्वियसली इज गोइंग अप बाई ऑलमोस्ट 2.5-3 times, सो दैट गिव मी अ 6,000+ टॉप लाइन without adding any further capacity expansion.
Okay. और हमें क्या रिस्क है अगर ये कुसुम अभी जो भी सप्लाई चेन का डिसरप्शन है और प्राइस एस्केलेशन हो रहे हैं, क्या मार्जिन 22% के नीचे जा सकते हैं क्या कभी, कि इतना कॉम्पिटेटिव एनालिसिस हो ही नहीं पाए, क्योंकि 20-22 का तो 5 महीने का वर्किंग कैपिटल लग रहा है, तो इससे नीचे तो कोई काम भी नहीं करेगा ना शायद।
देखिए ऐसा है नितिन जी, एक बात, हम ये जो आज के दिन जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको शायद कोई भी आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि ऐसा होगा।
बराबर, सही है।
सो आज के दिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या ऐसी अनसर्टेनिटी आएगी नहीं आएगी, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं, एक मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि जो सिचुएशन आज है और ये सिचुएशन भी नहीं रहती है कि थोड़ी सी इससे अगर स्टेबिलिटी ऑफ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आती है, तो ये हम बहुत श्योर है कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हमारे इंक्रीज होंगे यहाँ से डिक्रीज होने की बजाय, क्योंकि फंडामेंटली हर चीज बहुत अलाइन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन अलाइन है, वो कैपेसिटीज बढ़ रही है और इवन वैल्यू इंजीनियरिंग भी हमारी टीम बहुत एग्रेसिवली और भी चीजें कर रही है, सो वहां पर वो चीजें बहुत अलाइन है। सो बट जो सिचुएशन एक्सटर्नल है, जो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड अवर कंट्रोल है, सो डेफिनेटली वो भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहां पर आपके इनपुट कॉस्ट एब्जॉर्बिंग बढ़ जाती है जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल होती है, पर उसका इफेक्ट सिर्फ ओसोल पंप लिमिटेड पे नहीं हो सकता, एंटायर इंडस्ट्री
जो इंडस्ट्री इफेक्ट
वो
ऑल्सो मोस्ट ऑफ इट ट्रांजिशनरी, सो यू मे सी इम्पैक्ट ऑन क्वार्टर और टू, बट आई डोंट थिंक सम ऑफ दीज are really permanent, most of these are transitionary.
Right, sir. और अपना हमारा कोई ऐसा सोच है कि इतना मार्केट शेयर अपना ये कुछ में रहना ही चाहिए, वो हिसाब से बिडिंग करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है सोच
हमारी? पीएम कुसुम में कंपनी ने बहुत टाइम अपना दिया है अपनी एक्सपर्टीज बनाने के लिए, अपना नेटवर्क बनाने के लिए, और इसमें हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली देखिए आज की डेट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले जब वॉल्यूम कम था तब ये बात और क्या होना चाहिए, आज बात आती है कि आपका बिजनेस कितना होना चाहिए। सो चूंकि पीएम कुसुम टू में हम बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट भी बड़ा सोच रही है। सो डेफिनेटली जो हमारा टारगेट है ग्रोथ का, वो हम एक्सपेक्ट करेंगे, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत रूट तक अवेलेबल है और नंबर ऑफ पंप इंस्टॉलेशन और हर चीज की अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हमारे पास, तो दैट वी कैन डेफिनेटली हमें मिलने वाला है, वो वहां पर कोई चैलेंज नहीं रहता है।
कोई नंबर शेयर कर सकते कि इतना परसेंटेज शेयर रहे?
ये ऑल डिपेंड कि अभी क्या क्वांटम आने वाला है, कैसे आने वाला है, उसके बेस पे ही हम लोग ये कोई क्वांटम की बात कर पाएंगे। बट मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी अभी तक र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स मल्टीपल की हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट देना एक एग्जैक्ट फिगर के बारे में वो थोड़ा सा
राइट। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू रेडी, थैंक यू वेरी मच।
Thank you. Next question is from the line of Hardik from HPMG. Please go ahead.
Hi sir, congratulations on a set of numbers. Am I audible?
Hi Hardik ji.
So sir, the question was on the lines of first ki, is it correct? Are we entering into the solar inverter space?
Yes, definitely. देखिए हम लोग already electronics में हमारी team अच्छा काम कर रही है सोलर पंपिंग में, सो हमारी इंटरनल टीम ने सोलर इन्वर्टर पे भी ऑलरेडी काम करना शुरू किया है, क्योंकि हम लोग रूफटॉप में एंटर ले रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली हम इन्वर्टर पे भी इंटरनल काम करना शुरू कर दिया है। तो वी आर लिटल वेरी होपफुल कि आने वाले फ्यूचर में ये भी हम अपनी बास्केट में ले आएंगे प्रोडक्ट।
राइट, सो इज इट अ बैक एंड टू एंड प्रोडक्ट या इज इट मोर ऑफ एन असेंबली वर्क विच वी विल बी डूइंग?
नो, स्टार्टिंग अगर हम बात करें कि इन कमिंग फ्यू मंथ्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट असेंबली विद असेंबली, बट पैरेलली हमारी टीम ने जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली उसके सॉफ्टवेयर उसके हार्डवेयर पे काम करना एग्रेसिवली स्टार्ट किया है। सो वी आर क्वाइट वेरी श्योर कि एंड टू एंड विद इन नेक्स्ट 6 to 7 months में हम उसकी इंटरनल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे।
Right. Sir, so from what I've seen in the market and heard from other people, other players, the segment is very, very cutthroat. Most of the players are facing extensive competition from Chinese players and bottom line bhi un log ka, I think they are just breaking even on the cash front. So what are your thoughts on that? Will these be dragging our margins in the near future?
You're talking about inverter especially?
Yes. Yes.
देखिए डेफिनेटली, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि हम इन्वर्टर को एज ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन का पार्ट ले रहे हैं, हम उसको हमारा पूरे प्रोजेक्ट का एक इनपुट आइटम है। सो हम इन्वर्टर को एज ए सोलो एक सेल के हिसाब से मॉड्यूल नहीं ले रहे हैं, हम उसको अपना एक फैसिलिटेशन के हिसाब से देख रहे हैं। जैसे हम लोगों का अपनी पुरानी स्ट्रेटजी रही है, जितने हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन है हमने उसको कभी भी रेवेन्यू मॉडल नहीं बनाया, हमने उसको अपना एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन टू कंट्रोल द क्वालिटी एज वेल एज उसमें प्रॉफिट एनहेंसमेंट, ये सब का हमारा मोटो है। सेम वे में हम इन्वर्टर में प्लान कर रहे हैं कि इन्वर्टर चूंकि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जाने वाला है देने वाले हैं, सो इट विल द पार्ट ऑफ दैट एंटायर प्रोजेक्ट।
राइट, सो इट विल बी लाइक अ पैकेज डील।
या पैकेज एंड सेकेंडली देखिए इन्वर्टर हमारे से हमारे पास कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी डाटा एंड डेफिनेटली वो हमें कुछ इनपुट तो देगा। इन्वर्टर में बहुत अच्छे ढंग से काम करें तो वी आर क्वाइट वेरी श्योर कि वहां पर हमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। सो इट्स अ सॉर्ट आउट ऑल टाइप ऑफ कंप्लीट टू कैप्चर ऑल द बास्केट, मतलब इसमें हमारे पास सप्लाई चेन भी हो कंट्रोल में हो, हमारी क्वालिटी भी हो, हमारा हम किस तरह की आरएनडी करके अपने कस्टमर को बेटर चीज दे पाए आरएनडी करके वो भी है, तो इस तरह के ऑल टुगेदर को बास्केट देखेंगे तो वी आर इन प्लस पोजिशन, वी विल बी इन प्लस पोजिशन।
Right. And the second question was ki just on those same lines ki when will you launch this product, when will revenue start kicking in, and second again on the same lines ki assuming this Kusum 2.0 doesn't come for the near, like at least for 1 or 2 quarters, right? So and there is a slowdown, assuming there is a slowdown on the other individual state picks, right? So अगर हम पूरा पंप का रेवेन्यू साइड में रख दे So from the PM Kusum, from the PM Ghar Surya Ghar Yojana and any other schemes what we are targeting, what kind of base revenue excluding pump we are looking on a quarterly basis?
देखिए अगर हाइपोथेसिस पे बात कर लेते कि पीएम कुसुम योजना बहुत डिले होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन ना के बराबर है फिर भी मान लेते हैं सो अगर हम अदर देन पंप के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली हम काफी जगह फोकस कर रहे हैं जैसे एक्सपोर्ट में भी हम लोग इसमें काफी फोकस कर रहे हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क को भी हम लोग एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे साइमल्टेनियसली जो जैसे मैंने बताया पीएम सूर्य घर सो पीएम सूर्य घर में हम एंटर हो रहे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी और प्राइवेट बिजनेस में भी तो वहां से भी डेफिनेटली हम रिवेन्यू लेके आएंगे सो अगर पीएम कुसुम नहीं रहता है तो डेफिनेटली एक बार हमारे रिवेन्यू पे भी थोड़ा हिट आ सकता है मैं डेफिनेटली इसको डिनाई नहीं करूंगा बट एक चीज बहुत क्लियर है कि एज ए फंडामेंटली ओसवाल इज वेरी स्ट्रांग और ओसवाल के पास फंडामेंटली टीम भी बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज नेटवर्क ये सब चीजें की स्ट्रेंथ ऑलरेडी ओसवाल के पास है तो बिजनेस में टेम्परेरी टर्बुलेंस आ सकता है उसके लिए हमारी टीम कहीं भी डिमोटिवेटेड नहीं है कहीं भी टीम इस तरह की चीज में नहीं है कि अगर टेम्परेरीली हमारे पास किसी तरह का टर्बुलेंस आता है तो हमें किस तरह नेगेटिव थॉट आएगा कोई बात नहीं सर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस कि बिजनेस में अगर थोड़ा टेम्परेरी हमारा डिक्लाइन हुआ कोई बात नहीं हमारा बहुत लॉन्ग रन में बहुत फ्यूचर बड़े प्लान्स हैं वहां पर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं कि हम लोग अच्छे रिवेन्यू में अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छे मार्केट सिनेरियो में डाइवर्सिफाइड और हर तरह के बिजनेस में जाएंगे क्योंकि रिस्क फैक्टर हमारे पास ओसवाल के पास एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली बहुत कम है
राइट सर बट माय क्वेश्चन वाज नॉट ऑन दैट लाइन क्वेश्चन वाज मोर फ्रॉम कि अगर हम पंप सिर्फ एक्सपोर्ट पंप्स भी छोड़ दो पंप एज अ होल सेगमेंट छोड़ दो राइट तो अगर हम सिर्फ सूर्यघर योजना सोलर पैनल सेल सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और इन्वर्टर ये सब मिला के ऑन एन एवरेज क्या रन रेट रहेगा अपना क्वार्टरली बेसिस पे
वैसे तो मैं आपको एक चीज ये जैसे मैंने बताया कि हम लोग इस सेगमेंट में हम बहुत तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन चूंकि ये फर्स्ट ईयर होने वाला है हमारा यहाँ पर हम लोग के एक्सपीरियंस भी काम करने वाले हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं हर टेंडर्स में हर मार्केट में क्या है उसके बाद हमें उस फील्ड में कितना एग्रेसिव गोल लेना पड़ेगा तो ये ऑल डिपेंड करेगा तो एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह सकता कितना रिवेन्यू हम इन फील्ड में कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे आज के दिन एग्जैक्ट क्योंकि ये मेरे सारे नए फील्ड होंगे
कुछ कैलकुलेट आपका बॉल पार्क तो रहेगा कि हम लोग का ये टारगेट है कि चलो फर्स्ट ईयर में 100-200 करोड़
इस साल इस डायरेक्शन में करीबन 1000 करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेट
ओके
ये बिजनेस मैं आराम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके लिए हमें बहुत क्लियर विजन आने वाला है जो हमें दिख रहा है अब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने में सिस्टम में क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाले हैं किसको हम ज्यादा चूज करने वाले वो एक अलग बात है बट इतना हमें बहुत क्लियर विजिबिलिटी आ रही है
अंडरस्टैंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑल द बेस्ट सर थैंक यू
थैंक यू दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई नाउ हैंड द कॉन्फ्रेंस ओवर टू मैनेजमेंट फॉर क्लोजिंग कमेंट्स
Thank you everybody on behalf of management I would like to thank everybody I would like to hand over the call for the closing remark to Vivek ji
thank you very much aap logon ne jo Oswal Pumps Limited pe trust aap logon ne kiya hua hai so we are very assured ki company aur uski team puri dignity ke sath aur pure aapke कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगी और ये हमारा एश्योरेंस है थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल ऑफ यू
थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द ओसवाल पंप्स लिमिटेड दैट कंक्लूड दिस कॉन्फ्रेंस थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड यू मे नॉट डिस्कनेक्ट योर लाइंस